सुप्रभात प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूं दिलीप मंडल का लेख, जिसमें वो बता रहे हैं कि एलीट किला टूट रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में दलित छात्र पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहे हैं। भारत ने एक क्षेत्र में पिछले दिनों चीन को पीछे छोड़ दिया। अब अमेरिका में जिस देश के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो देश भारत है। पिछले महीने दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास ने सूचना दी कि वो 82,000 से ज़्यादा भारतीयों को स्टूडेंट्स वीज़ा जारी कर चुका है। अमेरिकी दूतावास की अधिकारी पेट्रेशिया लसीना ने इस चलन का स्वागत किया और कहा कि विदेशी स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका पसंदीदा जगह है। इससे पहले दूतावास ने ये सूचना दी थी कि 2020-21 में अमेरिका में 1.67 लाख भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। ऐसा लगता है कि कोविड की पाबंदियां हटने के बाद अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। हमें नहीं मालूम है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका या अन्य विकसित देशों जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फ्रांस और जर्मनी समेत अन्य यूरोपीय देशों में जा रहे हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐसा आंकड़ा शायद उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं आगे बताऊंगा कि पहले विदेश पढ़ने जाने वाले मुख्य रूप से उच्च सामाजिक समूहों के लोग हुआ करते थे। हाल के वर्षों में और खासकर इस साल में अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन पर ढेर सारे अनुसूचित जाति और उससे कुछ कम ओबीसी और जनजाति के छात्रों के विदेश पढ़ने जाने की सूचनाएं देख रहा हूं। कोई भी ये पता लगा सकता है कि अमेरिका या अन्य विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने वाले ज़्यादातर भारतीय स्टूडेंट्स उच्च जातियों के हैं, लेकिन हम इसमें आ रहे बदलाव को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। ये सही है कि सवर्ण छात्रों की तुलना में अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी के छात्र नाम मात्र के लिए ही विदेश पढ़ने जा रहे होंगे, लेकिन अब ये चलन जोर पकड़ने लगा है और आने वाले दिनों में इन वर्गों से भी काफ़ी छात्र विदेश जाएंगे। कास्ट मैटर्स किताब के लेखक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर सूरज येंगड़े ने हाल ही में ट्वीट करके बताया कि वे इन दिनों जिस भी देश में जाते हैं वहां उन्हें आम्बेडकर की संतानें यानी वंचित वर्गों के स्टूडेंट्स मिलते हैं। वे संघर्ष करके आगे आ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि एक या दो दशक का समय दीजिए, बहुजन स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से नजर आएंगे। सूरज येंगड़े ने यह भी बताया कि वे डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना करेंगे, जिसकी विभिन्न देशों में शाखाएं होंगी। पढ़ने के लिए विदेश जाना भारत में कोई नई बात नहीं है। नई बात है वंचित जातियों के इस क्षेत्र में जगी रुचि। आज़ादी से काफ़ी पहले से भारतीय राजा, नवाब, जमींदार, व्यापारी, वकील और अंग्रेजी राज के भारतीय अफसर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते रहे। ये चलन सबसे ज़्यादा बंगाल, आपके महाराष्ट्र और तमिलनाडु में रहा। फॉरेन रिटर्न होना उस समय उसी तरह गौरव की बात थी जिस तरह आज ये बात गर्व से कही जाती है कि मेरा बेटा या बेटी अमेरिका में बस गए हैं। पुराने समय में ज़्यादातर अमीर और सामाजिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग ही अपने बच्चों को विदेश भेज पाते थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसे चंद अपवाद थे। उनका विदेश जाना भी इसलिए संभव हुआ क्योंकि बड़ौदा के मराठा राजा गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि विदेश से लौटने के बाद वे बड़ौदा में अपनी सेवाएं देंगे। कांग्रेस का लगभग सारा शीर्ष नेतृत्व गांधी, नेहरू, पटेल विदेश से पढ़कर लौटे लोगों से बना था। आज़ादी के बाद भी ये चलन जारी रहा। एलीट लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते रहे। इधर देश के अंदर भी सरकारी नौकरियों और पीएससी के कारण पढ़े लिखे लोगों का एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना तेज हुआ। इस प्रक्रिया का लाभ भी ज़्यादातर सामाजिक रूप से आगे बढ़े हुए लोगों को हुआ क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन के पहले जुड़ने के कारण वे इसका फ़ायदा उठाने में सक्षम थे। इस तरह देश में सरकारी अफसरों, शिक्षकों, अकाउंटेंट, वकीलों आदि का एक वर्ग तैयार हुआ जो अपने बच्चों को विदेश भेजने की सोच रहा था और कई लोग ऐसा कर पा रहे थे। अपनी चर्चित किताब कास्ट ऑफ मेरिट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अजंता सुब्रमण्यम ने विस्तार से बताया है कि सवर्ण और खासकर ब्राह्मण इंजीनियरिंग एजुकेशन और आईआईटी में कैसे छा गए और वहां से उनके लिए अमेरिका जाने का रास्ता किस तरह खुला। इसमें वे जाति की परंपरा, सांस्कृतिक क्षमता और संपर्कों के जाल की भूमिका देखती हैं। 1960 के दशक के अंत से भारतीय इंजीनियर बड़ी संख्या में अमेरिका जाने लगे, जिनमें से कई ने वहां उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लिया। सूचना क्रांति के नए दौर में ये चलन बढ़ गया। पहले से वहां गए लोग अपने समुदाय के बच्चों को प्रोत्साहित करके अमेरिका ले जाने लगे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और अन्य समूहों के छात्र भी विदेश जाने लगे हैं। इसके पीछे मैं 6 प्रमुख वजहें देखता हूं। पहली वजह है कि केंद्र और कई राज्य सरकारें वंचित जाति वर्गों और जाति समूहों के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे रही हैं। इसमें से कई योजनाएं कामयाब हैं। मिसाल के तौर पर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र व तमिलनाडु की ओवरसीज़ फेलोशिप का फ़ायदा कई विद्यार्थी उठा चुके हैं। आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए झारखंड सरकार की स्कॉलरशिप भी कामयाब है, लेकिन दिल्ली सरकार की ओवरसीज फेलोशिप की शर्तें इस तरह रखी गई हैं जिसकी वजह से गिने चुने छात्र ही इसे ले पा रहे हैं। अगर तमाम राज्य सरकारें स्कॉलरशिप दें और शर्तों को आसान बनाया जाए तो बड़ी संख्या में ऐसे छात्र विदेश जाकर पढ़ पाएंगे। दूसरा कारण, ये बात महत्वपूर्ण है कि 2022 का भारत 1947 के भारत से अलग है। आरक्षण के कारण वंचित जातियों में लाखों लोगों का मिडिल क्लास बन चुका है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था से सरकारी नियंत्रण हटने और बाजार अर्थव्यवस्था के आने से भी वंचित समुदायों में कई उद्यमी बने हैं। ये दोनों तरह के कई लोग अपने बच्चों को विदेश भेजने में समर्थ हैं या कम से कम ऐसा करने की सोच सकते हैं। तीसरा कारण, पश्चिमी दुनिया खासकर अमेरिका और ब्रिटेन में हाल के दिनों में भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद को लेकर जागरूकता बढ़ी है। अभी तक अफर्मेटिव एक्शन या डाइवर्सिटी का फायदा भारतीय स्टूडेंट्स को मिलता था, अब वहां खासकर यूनिवर्सिटी जैसे अकादमिक क्षेत्र में ये चेतना बढ़ी है कि भारतीय समाज में स्तर हैं और कुछ लोग उनमें वंचित हैं और कुछ बेहद मजबूत। इस वजह से वहां एक के बाद एक यूनिवर्सिटी में जाति भेद को स्वीकार किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने जाति को भेदभाव के सूचक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हार्वर्ड, ब्रैंडिस और यूसी डेविस तथा कॉल्बी कॉलेज जाति को भेदभाव के आधार के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। जाति के प्रति चेतना का अमेरिकी शिक्षा जगत में हुआ विस्तार भारत की वंचित जातियों को फायदा पहुंचाएगा। चौथा कारण, जाति के प्रति चेतना के विस्तार में लेखकों की भी भूमिका है। मिसाल के तौर पर पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसाबेल विल्कर्सन ने जातिवाद पर बहुचर्चित किताब कास्ट ओरिजिन्स ऑफ आर डिसकंटेंट्स लिखी, जो वहां बेस्टसेलर बनी। अमेरिकी टीवी की सबसे बड़ी हस्ती ओपरा विनफ्रे ने इस किताब को अपने बुक क्लब में शामिल किया और 100 CEO को इसे भेजा। इसके अलावा रटगर्स यूनिवर्सिटी की ऑड्र ट्रस्को, सूरज यंगड़े, अजंता सुब्रमण्यम का अकादमिक कार्य भी अमेरिका में पढ़ा जा रहा है। पांचवा कारण, इसके अलावा जाति को लेकर अमेरिका में तीन बड़े विवाद भी हुए। पहला केस टेक कंपनी सिस्को का है, जिसमें एक भारतीय इंजीनियर ने दो भारतीय मैनेजरों पर जातिवाद करने का आरोप लगाया, जिसका संज्ञान कैलिफोर्निया के नौकरी दफ्तर ने लिया। दूसरा केस न्यूजर्सी में एक हिंदू मंदिर का है, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि वहां वंचित जातियों के मजदूरों को बंधुआ रखकर उनसे काम कराया जाता है। तीसरा केस गूगल का है, जिसमें कर्मचारी जागरूकता के एक कार्यक्रम में दलित अधिकार एक्टिविस्ट और इक्वेलिटी लैब के संस्थापक तेनमोई सुंदर राजन को बोलना था, पर भारतीय सवर्ण कर्मचारियों के विरोध के कारण यह कार्यक्रम न हो पाया। इन घटनाओं से भी अमेरिकियों को पता चल रहा है कि भारतीयों में जाति भेद है और खासकर दलित कितनी तरह से सताए जाते हैं। छठा कारण, भारत में अब कई बहुजन खासकर दलित संगठन और कार्यकर्ता स्टूडेंट्स को विदेश में शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं और उन्हें सुविधाएं भी दे रहे हैं। इसका सकारात्मक असर हुआ है। इन संगठनों में आए नए आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं को इन संस्थाओं में साकार रूप मिल रहा है। इनमें सबसे चर्चित नाम नालंदा एकेडमी का है, जिसका वर्धा कैंपस और डिजिटल रूप 14,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच रहा है। इसके संस्थापक अनूप कुमार हैं। वहीं एकलव्य संस्था भी महाराष्ट्र के वंचित स्टूडेंट्स को देश और विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए तैयार कर रही है। इसके संस्थापक राजू केंद्रे का समाज सेवा में अब बड़ा नाम है और फोर्ब्स मैगजीन ने भी उनके काम के महत्व को स्वीकार किया है। राजू केंद्रे ने हाल ही में लंदन में अपनी फेलोशिप पूरी की है। उनका काम मुख्य रूप से विमुक्त जनजातियों के बीच है। दि प्रिंट की पत्रकार निधमा तनेजा ने हाल ही में एकलव्य संस्था के कामकाज पर विस्तृत रिपोर्ट लिखी है। ऐसे प्रयासों के अब असर दिखने लगे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।